क्रॉस करी थी।
चलें सुना मालूम। तो अब हम मारूफ व मसाइल से इन आयात की तफसीर पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 537। ठीक है, 537 पे जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें लिखते हैं कि अगली आयात में अव्वल नेक मुत्तकी बंदों की जजा का जिक्र है, इन्ना लिल मुत्तकीना इंदा रब्बिहिम जन्नात नईम। ठीक है, और इसके बाद मुशरिकीन मक्का के एक और बातिल दावे का रद्द है, वो ये कि कुफार मक्का कहा करते थे कि अव्वल तो कयामत आने वाली नहीं है और दोबारा जिंदा होकर हिसाब किताब का किस्सा सब अफसाना है, बनी बनाई बातें, सारी बनाई हुई बातें। और अगर बिलफर्ज ऐसा हो भी गया तो हमें वहाँ भी ऐसी ही नेमतें और माल दौलत मिलेगा जैसा दुनिया में मिला हुआ है। इसका जवाब कई आयतों में दिया गया है। ठीक है, ये जो आगे कई आयतें आई ना, अम लकुम किताबुन फीही तदरसून इन लकुम फीही लमा तखय्यरून, तो इन सारी आयतों में इसका जवाब दिया गया है कि क्या अल्लाह ताला नेक बंदों क्या अल्लाह ताला नेक बंदों और मुजरमीन को बराबर कर देंगे, अफनज अलुल मुस्लिमीन कल मुजरमीन, बराबर कर देंगे इन दोनों को। ये कैसा अजीब व गरीब फैसला है जिस पर ना कोई सनद, ना दलील, ना किसी आसमानी किताब से इसका सबूत, ना अल्लाह की तरफ से कोई वादा वईद कि वहां भी तुम्हें नेमत देगा। ठीक है, तो बस अपनी तरफ से घड़ी हुई बातें ये। तो देखें, ये भी तो नबी अलैहिस्सलाम को यही कहते थे ना कि ये जो बातें करते हैं ये बनी बनाई बनाई हुई बातें, घड़ी हुई बातें। तो इनका जवाब अल्लाह ताला भी इसी अंदाज में दे रहे हैं कि ये तुमने भी जो है वो घड़ी हुई बातें बनाई हुई हैं, कि तुम जैसी भी जिंदगी गुजार रहे हो तुम्हें मरने के बाद भी जन्नत की नेमतें मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोलने वाला बंदा है और यहाँ पर बोलने वाला रहमान है, परवरदिगार है। ठीक है, लेकिन परवरदिगार जो बोल रहा है, अब उस पर होता है ना कि जी हाँ अल्लाह ताला बोलते हैं, नहीं भाई, अल्लाह ताला जो बोल रहे हैं तो अल्लाह ताला की जो अल्फाज हैं वो हम तक नबी के वास्ते से पहुंचे हैं ना। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो दोनों तरफ बंदे ही हैं, लेकिन यहाँ पर गुनाहगार, बदकार, बेहया बंदे हैं और यहाँ पर नेकोकार और हया वाले और सादिक और अमीन बंदा है। दोनों तरफ बंदे ही हैं, लेकिन बंदे में फ़र्क होता है ना। तो बात की हकीकत जो है वो बंदे के जुबान, बंदे की बुनियाद पर फैसला किया जाता है कि कौन बोलने वाला है। ठीक है, वो भी बोल रहे हैं कि घड़ी हुई बातें, ये भी बोल रहे हैं कि घड़ी हुई बातें। ठीक है ना, लेकिन कौन सच बोल रहा है ये उस बंदे के किरदार और इखलाक पे की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। ठीक है, खाली तकरीरों से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अपनी अपना किरदार, अपना इखलाक भी जो है वो भी पेश करना पड़ता है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम के पास किरदार था, नबी अलैहिस्सलाम के पास इखलाक थे, नबी अलैहिस्सलाम के पास सच्चाई और दयानत थी, ठीक है ना, हया थी। तो आप की बात को सच बोला जाएगा, सच माना जाएगा, और उन लोगों के पास ये सारी चीज़ें नहीं थी तो उनकी बातों को सच नहीं माना जाएगा। क़यामत की एक अकली दलील, इन आयात मस्कूरा से साबित हुआ कि क़यामत आना और हिसाब किताब होना और नेको बद की जजा व सज़ा, ये सब अकलन ज़रूरी है। ठीक है, अब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये क़यामत का आना ना, ये ऐन अकल के मुताबिक भी है। ठीक है, यानी ये सिर्फ जो है वो ऐसा नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम ने बस बात बताई है तो सिर्फ एतमाद की बुनियाद पर क़यामत के ऊपर ईमान लेकर आए। ठीक है, बल्कि क़यामत एक ऐसी चीज़ है कि इंसान अगर अपनी अक़ल को भी थोड़ा इस्तेमाल कर लेना तो भी क़यामत की हकीकत उसके सामने खुल जाती है। ठीक है, क़यामत की हकीकत कि क़यामत आनी ज़रूरी है। ठीक है, क़यामत की तफसील नहीं खुलती अकल को इस्तेमाल करने से कि क़यामत के दिन क्या 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 होगा, ये अकल को इस्तेमाल करने से नहीं मालूम हो सकता। ठीक है, लेकिन जस्ट द फैक्ट कि क़यामत होना ज़रूरी है, इस बात तक इंसान की अकल भी पहुंच सकती है। क्या मतलब कि अगर किसी शख्स के पास कोई नबी ना पहुंचा हो क़यामत के बारे में बताने के लिए, ठीक है ना, तो फिर भी उस शख्स से ये डिमांड अल्लाह ताला करते हैं कि वो क़यामत के होने का इनकार ना करे। ठीक है, क़यामत के होने का इनकार ना करे क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको ये अकल दी हुई है कि जिस अकल की बुनियाद पर वो क़यामत के होने का के होने को समझ सकता है, क़यामत होना ज़रूरी है। तो वो कैसे, उसकी तफसील आगे आ रही है। चलो एक دوبارہ پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. تو قیامت کی ایک اصلی دلیل یہاں سے پڑھنا شروع کیا تھا, لیکن میوٹ ان میوٹ میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. شاید آپ نے سازش کی آواز بھی سنی ہوگی جب اٹھانے کے لیے میں نے لگائی تھی, وہ میوٹ کر کے لگائی میرے خیال میں, لیکن وہ ان میوٹ ہوا ہوتا میرا. تو قیامت کی ایک عقلی دلیل, تو حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ ان آیات مذکورہ سے ثابت ہوا کہ قیامت آنا اور حساب کتاب ہونا اور نیک و بد کی جزا و سزا یہ سب عقلاً ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو کیا مطلب کہ نیک و بد کی جو جزا سزا ہونے والی ہے یہ عقلاً ضروری ہے, کہ کیا مطلب ہوا کہ اگر انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے قیامت کی حقیقت پر غور کرے تو اس کی عقل بھی اس کو قیامت تک پہنچا دے گی, یعنی اس کو اس بات تک, اس کنکلوژن تک پہنچا دے گی کہ قیامت آنی ضروری ہے. ٹھیک ہے, قیامت آئے بغیر معاملہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب ہے اس کا, یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ عقلاً ضروری, قیامت تک پہنچنے کے لیے عقل بھی کافی ہے, قیامت کا ہونا جو ہے وہ عقلاً بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر اللہ کے نبی آ کر کے کسی کو نہ بتائیں, مثال کے طور پر خالی سمجھنے کے لیے, کہ اگر اللہ کے نبی آ کر کسی کو نہ بتائیں کہ قیامت آئے گی, ٹھیک ہے, تو بغیر نبی کے بتائے ہوئے بھی ایک انسان کی عقل جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دے کے پیدا کی ہوتی ہے, وہ عقلاً بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ قیامت آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو پھر نبی کیا چیز لے کر کے آتے ہیں قیامت کے بارے میں, نبی کیا بتاتے ہیں قیامت کے بارے میں, اگر آپ سے ہم پوچھیں, اگر یہ انسان کی عقل بھی یہ بات سمجھ سکتی ہے کہ قیامت ضروری ہے, تو پھر نبی نے قیامت کے بارے میں کیا بتانا ہوتا ہے؟ جی نبی نے قیامت کے بارے میں پھر کیا بتانا ہوتا ہے اگر عقل کافی ہے؟ جی نہیں پتا, علامات. ٹھیک ہے, علامات جو ہے وہ ایک چیز ہے جو نبی علیہ السلام نے بتائی. ٹھیک ہے, لیکن علامات تو قیامت سے پہلے ہوتی ہیں, لیکن ابھی ہم پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کے بارے میں کیا نبی نے بتانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا جواب سادہ سا ہے, وہ یہ ہے کہ تفصیلات قیامت کی نبی نے بتانی ہوتی. ٹھیک ہے نا, کہ قیامت کے دن اگزیکٹلی کیا کیا معاملات پیش آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ جو تفصیلات ہیں نا, روز حشر میں کیا ہوگا, عرش کا سایہ ہوگا, کن لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا, ٹھیک ہے, اور کن گناہوں کے مرتکب لوگوں کو کس قسم کی سزائیں ملیں گی, اور کن نیکیوں کے عمل کرنے والوں کو کس قسم کی جزائیں ملیں گی, یہ ساری تفصیلات ہیں. یہ تفصیلات نبی نے بتانی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بنیادی جو ایک فیکٹ ہے کہ قیامت ہونی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ انسان اپنی عقل سے بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے. تو اسی کو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہ کیونکہ اس کا تو دنیا میں ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں عموماً فساق فجار, فساق کہتے ہیں جو کھل کر کے گناہ کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے بغیر چھپائے ہوئے گناہ کرتے ہیں, یعنی گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہ کا اظہار بھی کرتے ہیں, ایسے شخص کو فاسق کہا جاتا ہے اور اس کی جمع فساق ہے. فجار ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کہ کثرت سے گناہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں, لیکن دیدہ دلیری کا مظاہرہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, دیدہ دلیری کہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گناہ کرنا, تو دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرنے والوں کو فاسق کہتے ہیں اور ویسے ہی گناہ کرنے والے ان کو فاجر کہتے ہیں, اور اس کی جمع فجار ہے. تو فساق, فجار, بدکار, ظالم, چور اور ڈاکو ہیں. نفع یعنی جو لوگ ایسے ہیں وہ نفع میں رہتے ہیں, نفع میں رہتے ہیں اور مزے اڑاتے ہیں. ایک چور اور ڈاکو ایک رات میں بعض اوقات اتنا کما لیتا ہے کہ شریف نیک آدمی عمر بھر میں بھی نہ کما سکے. ٹھیک ہے نا, ایک ڈاکہ ڈالے بینک کے اوپر تو तो करोड़ों जो है वो या लाखों जो है वो लूट सकता है उसके अंदर। फिर वो ना खौफ पे खुदा और आखिरत को जानता है, ना किसी शर्म हया का पाबंद है, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को जिस तरह चाहे पूरा करता है। यानी ऐसे लोग चोरी चोरी का जो माल कमाते हैं तो उस माल से फिर वो अपनी मन मर्जी की जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है ना, खूब जो है वो बेहयाई के काम करते हैं और जगह जगह जो है वो अपने मर्जी से जाते हैं, खाते हैं जो चाहते हैं उनका वो खाते हैं। तो खुलासा ये है, अच्छा, और नेक शरीफ आदमी अव्वल तो खुदा से डरता है, ठीक है, शरीफ आदमी की बात हो रही है, ठीक है, नेक आदमी खुदा से डरता है, और शरीफ आदमी का क्या मामला होता है कि अगर ये नेक भी हो तो ये खुदा से भी डरता है, लेकिन अगर वो खुदा से ना भी डरे तो बरादरी के शर्म व हया से मगलूब होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम में से अक्सर जिस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम यानी कोई बहुत नेक लोग नहीं होते हैं हम, ठीक है ना, यानी बहुत सारे जो है ना यानी हम गुनाह कर रहे होते हैं, ठीक है, और इबादतें जो हैं वो नहीं कर रहे होते हैं, फ़राइज़ नहीं पूरे कर रहे होते हैं, लेकिन हम बरादरी की में बदनामी की वजह से बहुत सारे गुनाहों से बच जाते हैं, ठीक है ना, अपने नाक की हिफाजत के लिए, अपने नाम की हिफाजत के लिए हम बहुत सारे बुरे काम नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं मुआशरे में, ऐसे लोग शरीफ कहलाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुआशरे में उनकी एक इज्जत होती है ना, अब वो इस इज्जत को दांव पे नहीं लगाना चाहते, ठीक है। तो चाहे खुदा के खौफ से नेकी नेकी करें और गुनाहों से बचें, चाहे बरादरी की शर्म हया से मगलूब होकर गुनाहों से बचें, ठीक है, तो बहरहाल वो बुरे काम नहीं कर सकते जो कि ये चोर डाकू किस्म के लोग करते हैं। खुलासा ये है कि दुनिया के कारखाने में तो बदकार, बदमाश, कामयाब और नेक शरीफ आदमी नाकाम नजर आता है, यानी वो कामयाब नजर आता है और नेक शरीफ आदमी नाकाम नजर आता है। अब अगर आगे भी कोई ऐसा वक्त ना आए जिसमें हक व नाहक का सही इंसाफ हो, नेक को अच्छा बदला मिले और बद को सजा मिले, तो फिर अव्वल तो किसी बुराई को बुराई और गुनाह को गुनाह कहना लग्व और बेमानी हो जाता है कि वो एक इंसान को बिला वजह किसी ख्वाहिशात से रोकना है। यानी आप खामखाई लोगों को ख्वाहिशात से रोक रहे हैं, भाई उनको कम से कम यहाँ तो एंजॉय करने दो, राइट, अगर आगे जन्नत शन्नत कोई नाम की चीज़ नहीं है तो लेट देम एंजॉय इन दिस वर्ल्ड, ठीक है ना, तो फिर खामखाई तुम लोगों को रोके चले जा रहे हो बस ताकि लोग आपकी माने आपकी माने आपकी माने, राइट, क्यों आपकी माने, अपनी मन मर्जी से नहीं गुजारे, ठीक है, तो ये तो लग हो गया ना कि भाई नो ख्वाहिश पूरी ना करो, ख्वाहिश पूरी ना करो, ख्वाहिश पूरी ना करो, ठीक है, तो खामखाई जो है वो उनको ख्वाहिशात से रोकना है। दूसरे फिर अदल व इंसाफ के कोई मानी बाकी नहीं रहते, ठीक है ना, यानी अगर जन्नत जहन्नुम नहीं है तो फिर अदल व इंसाफ के कोई मानी ही बाकी नहीं रहते। जो लोग खुदा के वजूद के कायल हैं वो इसका क्या जवाब देंगे कि खुदा ताला का इंसाफ कहाँ गया, ठीक है, यानी जो खुदा को मानते हैं तो फिर खुदा क्या कर रहा है, राइट, क्या उसका होने का फायदा अगर आगे जन्नत और जहन्नुम का ही मामला कोई नहीं है। तो दुनिया में तो ऐसा नहीं होता कि मुजरिम को सजा मिल जाए और नेक को जजा मिल जाए, दुनिया में तो बहुत कम ऐसा होता है। तो आगे इसको मजीद लिख रहे हैं कि रहा ये शुबा कि दुनिया में बसा औकात मुजरिम को पकड़ लिया जाता है, उसकी रसाई होती है, सजा पाता है, शरीफ आदमी का इम्तियाज इससे यही वाजे हो जाता है। यानी अगर कोई आखिरत का मुनकर है ना तो वो ये एतराज़ कर सकता है कि भाई मुजरिमों को दुनिया में सजा होती है ना, ठीक है, उनको जो है वो फांसी भी लग जाती है, उनको जो है कैद भी हो जाती है और इस तरह से मामला हो जाता है इस दुनिया के अंदर ही, तो कयामत की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, और अदल व इंसाफ हुकूमतों के कवानीन से भी कायम हो जाता है। तो ये एतराज़ गलत है, ठीक है ना, ये इसलिए गलत है कि अव्वल तो हर जगह और हर हालत में हुकूमत की निगरानी हो ही नहीं सकती, ठीक है, हर जगह तो हुकूमत वॉच नहीं कर सकती है ना, जहाँ हो जाए वहाँ अदालती सबूत हर जगह बहम पहुँचना आसान नहीं जिसके ज़रिए मुजरिम सज़ा पा सके, ओके, और जहाँ सबूत भी बहम पहुँच जाए तो जोर और ज़र और रिश्वत व सिफारिश और दबाव के कितने चोर दरवाजे हैं जिनसे मुजरिम निकल भागता है, ठीक है ना, मुजरिमों के लिए भागने के बहुत सारे तरीके हैं दुनिया के अंदर, और इस ज़माने की हुकूमती और अदालती जुर्म और सज़ा का जायज़ा लिया जाए तो इस वक्त तो सज़ा सिर्फ वो बेवकूफ़ बेअक़ल, यानी आजकल जो हमारे माशरे में मामला है तो वो तो ये है कि सिर्फ वो बेवकूफ़ बेअक़ल या बेसहारा आदमी सज़ा पाता है जो होशियारी से कोई चोर दरवाज़ा ना निकाल सके और जिसके पास ना रिश्वत के लिए पैसे हों ना कोई बड़ा आदमी उसका मददगार हो, यानी ना कोई सोर्स हो, ना कोई सिफारिश हो, या फिर वो अपनी बेवकूफ़ी से इन चीज़ों को इस्तेमाल ना कर सके। यानी उसके ख़ानदानी ताल्लुकात हैं तो बहुत अच्छे, बड़े बड़े लोगों के साथ उनके उसके ताल्लुकात हैं, लेकिन कब इन ताल्लुकात को इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है ये उसको नहीं आता हो, इतना बेवकूफ़ हो। ठीक है, तो ऐसा शख्स फिर जुर्म करने के बाद सज़ा भी पाता है, लेकिन बाकी सारे मुजरिम तो आज़ाद फिरते हैं। कितने मुजरिम आज के दौर के अंदर, कितनों को सजा होती है? अभी इंडिया के अंदर आप लोगों को पता ही होगा, जो इंडिया में रहने वाले हैं, कि कुछ लोगों ने कुछ मुसलमानों को यानी सबके सामने मारा, कत्ल कर दिया, वीडियो भी बनी उनकी, फिर उन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, राइट? लेकिन थोड़े दिन के बाद उनको बिल्कुल बरी कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अब उन लोगों को कौन सजा देगा जो उन्होंने इतनी अजियत दे करके एक इंसान को मारा? ठीक है, तो इस दुनिया के अंदर तो जजा और सजा नहीं होती, अगर होती भी है तो बहुत थोड़ी होती है। ठीक है, यहाँ तक हम अपनी क्लास रोकते हैं, अब आपकी हदीस की क्लास शुरू हो रही है, तो बात इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग प्लीज़ रोक करके अगर आप दोबारा स्टार्ट कर दें तो नहीं।